पृष्ठ संख्या 42। जो पक्ष उन्हें विशिष्ट बनाते हैं वह है समूचे नाटक में पिरोई हुई रंग दृष्टि, रंगमंच की सही विस्तृत परिकल्पना और उसका अनिवार्य अंग और कारण, नाटकोचित संवाद और सक्रिय सदृश्य भाषा, अभिनय की सूक्ष्मतम स्थितियों का पूरा ध्यान। यहाँ स्थूलता नहीं है, सूक्ष्मता ही है। रंगमंच के लिए सारे उपयोगी तथ्य जैसे उनके मस्तिष्क में स्पष्ट रहते हैं। नाटकीय स्थितियों का चयन, पात्रों की बातचीत का उतार चढ़ाव, गतियां क्रियाएं, विभिन्न ध्वनि प्रभाव, वातावरण की अनुकूल और प्रभावशाली सृष्टि, दर्शक को बांधने वाला माहौल, प्रकाश योजना और विभिन्न पद्धतियों और प्रयोग की संभावनाएं। ये नाटक एक ओर साहित्य विधाओं में नाटक के भिन्न मौलिक कलारूप को प्रतिष्ठित करते हैं, दूसरी ओर निर्देशक, अभिनेता, दर्शक के व्यक्तित्व की मौलिकता को भी चुनौती देते हैं। अध्ययन और प्रस्तुतिकरण दोनों दृष्टियों से सतर्क, उत्सुक करते हैं। नाटक की मूलभूत विशेषताओं और शक्ति का विस्तार हिंदी में वर्षों बाद यहाँ मिलता है। परंतु समस्याएं ऐसी हैं कि वे प्रश्न चिन्ह से आरंभ होती हैं और जहाँ समाप्त होती हैं वहाँ भी एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। सचमुच राकेश ने किसी स्तर पर कोई निश्चित उत्तर या समाधान नहीं दिया है। शायद यह उनके स्वभाव में ही था। प्रश्न हमेशा उठाएं और उन प्रश्नों से उलझते रहकर एक सही स्थिति और संभावना पर अवश्य पहुंचे भी। हिंदी नाटक और नाटककार को नई स्थितियों, संभावनाओं तक पहुंचाया भी। नाटक के संबंध में उसके स्वरूप या तत्वों का आरोपण उन्हें सह्य भी न होता, लेकिन इससे हटकर कुछ आवश्यक प्रश्न अवश्य उठाएं। उदाहरणार्थ, नाटककार की सत्ता का प्रश्न, चूंकि प्रसाद काल से नाटककार रंगमंच को हेय दृष्टि से देखता चला आ रहा था और नाटककार और नाटक की रंगमंच प्रक्रिया की साझेदारों में परस्पर कोई संबंध न था, इसीलिए नाटककार का अस्तित्व ही मात्र रचना के बाद समाप्त होता गया। राकेश को यह स्थिति स्वीकार्य नहीं थी। पहले के नाटककार की अपेक्षा आज की रंगमंचीय गतिविधियों में उनकी गहरी रुचि थी। उनके दौरान ही उन्होंने महसूस किया कि नाटककार अपने नाटक के मंचीकरण की प्रक्रिया से एकदम कटा हुआ है, उसका एक आवश्यक हिस्सा नहीं है, क्योंकि हिंदी में तो संगठित रंगमंच की कमी के कारण यह स्थिति कभी नहीं आ पाई और इसी वजह से लोगों की मानसिक पृष्ठभूमि भी ऐसी नहीं बन पाई जिसमें नाटककार के एक निश्चित अवयव होने की कल्पना की जा सके। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न इससे पहले लक्ष्मी नारायण लाल ने भी उठाए थे। उन्हीं के नाटक राम रानी की भूमिका इस माने में अपना ऐतिहासिक महत्व रखती है, लेकिन राकेश के साथ यह बहस ज्यादा सक्रिय रूप में उठी। अपने लेख नाटककार और रंगमंच में राकेश ने अपने विचार यूं स्पष्ट किए हैं कि रंगमंच का जो स्वरूप हमारे सामने है उसकी पूरी कल्पना परिचालक और उसकी अपेक्षाओं पर निर्भर करती है। नाटककार का प्रतिनिधित्व होता है एक मुद्रित या अमुद्रित पांडुलिपि द्वारा, जिसकी अपनी रचना प्रक्रिया मंचीकरण की प्रक्रिया से अलग नाटककार के अकेले कक्ष और अकेले व्यक्तित्व तक ही सीमित रहती है। संदर्भ 1, परिवेश, पृष्ठ संख्या 39। पृष्ठ संख्या 43। नाटककार के रंगमंच से मंचीकरण की प्रक्रिया से कटे रहने के कारण या तो रंग कर्मियों को नाटककार से शिकायतें रहती हैं या बिना किसी सूचना या विचार शक्ति के संवाद, भाषा, यहाँ तक कि पात्र भी बदल दिए जाते हैं या हटा दिए जाते हैं। नाटककार की इस अजनबी और संकट में पड़ी दयनीय स्थिति का राकेश ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा है कि रंगमंच की पूरी प्रयोग प्रक्रिया में नाटककार केवल एक अभ्यागत सम्मानित दर्शक या बाहर की इकाई बना रहे, यह स्थिति मुझे स्वीकार्य नहीं लगती। राकेश ने हमेशा इस बात पर बल दिया कि नाटककार की प्रयोगशीलता और क्रियात्मक रंगमंच की प्रयोगशीलता एक दूसरे से जुड़ सके, और दोनों को एक दूसरे के निकट लाने के लिए उन्होंने यह बहुत आवश्यक समझा कि नाटककार पूरी रंग प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग बन सके। वह अंग बनने के लिए ही चिंतित न हो, बल्कि उसी से उसकी रचना शक्ति भी विकसित हो सही दशा में। नाटक की रचना प्रक्रिया और रंगमंच की प्रयोगशीलता के परस्पर जुड़ जाने में वह दोनों ओर की संभावनाएं ज्यादा देखते हैं, रचना की भी और रंगमंच के विकास की भी। कहना ना होगा कि हिंदी में शायद ही किसी नाटककार ने इतनी दिलचस्पी के साथ इस प्रश्न पर विचार किया हो। स्वयं रंगमंच के अधिक से अधिक निकट आने का प्रयत्न किया हो और नाटक के विकास में अवरोधात्मक स्थितियों का इतना विरोध किया हो। नाटक क्षेत्र में प्रचलित ग्रहों को तोड़ने और सोचने के लिए भूमि तैयार करने में राकेश का उनके नाटकों का बहुत बड़ा हाथ है। नाटककार और अभिनेता के बीच की गहरी खाई को मिटाकर दोनों के अहम और कॉम्प्लेक्स को हटाकर व्यवधान को दूर करने में उनके नाटक सहायक हुए हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण लहरों के राजहंस की लंबी रचना प्रक्रिया है। 1963 में लिखा जाकर यह नाटक 1968 में दोबारा लिखा गया। बहुत सी आलोचनाओं प्रतिक्रियाओं को झेलते हुए समझते हुए उनका साझेदार होते हुए लहरों के राजहंस की भूमिका में इस नाटक की रचना प्रक्रिया का पूरा ब्यौरा देते हुए अंत में राकेश ने कहा है कि लहरों के राजहंस के ऊपर उठाई गई आपत्तियों का उत्तर देने के बाद भी लगता था, मैं एक अपराधी हूँ। हर आलोचना या आलोचनात्मक पत्र मेरे ऊपर लगाया गया अभियोग है। मुझे जैसे भी हो उस अभियोग का उत्तर देना है। अपनी रचना से लेखक की संबद्धता, निर्देशक, अभिनेताओं, दर्शकों और अन्य व्यक्तियों की आलोचनाओं के प्रति इतनी सतर्कता और सक्रियता, जहाँ नाट्य लेखन के प्रति लेखक के दायित्व का बोध कराती है, वहाँ उसकी उत्सुक और खुली मानसिकता साथ ही नाट्य विधा की जटिलता और मौलिकता को भी स्पष्ट करती है। संदर्भ 1, नटरंग अंक 6, 1968, पृष्ठ संख्या 10, 2, वही 3, पृष्ठ संख्या 26। पृष्ठ संख्या 44। 1966 में कलकत्ता की अनामिका संस्था द्वारा श्यामानंद जालान ब्रैकेट में निर्देशक और अभिनेता ब्रैकेट क्लोज ने जब इस नाटक को प्रस्तुत करने का विचार किया, तब कितनी ही बार लंबी बहस इस नाटक को लेकर होती रही। रात रात भर एक ओर अपने व्यक्तित्व के लेखक के मान का प्रश्न भी कि अपने केंद्र पर रखा जाए, दृष्टि यही रखनी चाहिए, दूसरी ओर रचनाकार की आंतरिक बेचैनी भी। परिणाम यह है कि जब नाटक प्रस्तुत हुआ तो रचनाकार को लग रहा था कि परीक्षा उसी की है, परीक्षक है वे सब लोग। और यही नहीं, उस रात का अनुभव नाटककार राकेश ने यूं लिखा, पहली रात को मैंने नाटक हॉल में बैठकर नहीं देखा। गहरे तनाव की स्थिति में एक पार्श्व में खड़ा मंच की गतिविधियों और खेल में होने वाली प्रतिक्रियाओं को जायजा लेता रहा। नाटक समाप्त होने तक माथे की नसें फड़कती रहीं। उसके चौथे दिन के अंत तक मन सहज स्थिति में नहीं आ पाया। ये प्रसंग सिर्फ इसलिए उठाए गए क्योंकि इससे रचना प्रक्रिया और मंचीकरण की प्रक्रिया के जुड़ने का प्रमाण मिलता है। नाटककार को कितना उदार, अधिक सतर्क, गंभीर और उत्साहित रहने की अपेक्षा है, यह राकेश ने अनुभव भी किया और उसका साक्षात प्रमाण भी दिया। नाटककार और निर्देशक के रचनात्मक सहयोग से कोई नाटक किस प्रकार महत्वपूर्ण हो सकता है, किन अर्थों में नाटक को एक सामूहिक कला मानकर ही उसके साथ न्याय किया जा सकता है, ये सभी बातें हिंदी नाटक इतिहास में पहली बार राकेश के व्यक्तित्व और नाटकों के साथ उपस्थित हुई। हिंदी नाटक और रंगमंच की विकास दिशा में इनका महत्व है। लहरों के राजहंस के नए संस्करण यानी तृतीय अंक के पुनर्लेखन को लेकर राकेश उस सारे सहयोग का महत्व मानते हुए साफ कहते हैं, मुझे यह स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि बिना रात दिन श्यामानंद के साथ नाटक के वातावरण में जिए, आधी आधी रात तक उससे बहस मुबाहिसे किए और नाटक की पूरी अनविति में एक एक शब्द परखें, वह अंश अपने वर्तमान रूप में कदापि नहीं लिखा जा सकता था। कम से कम हिंदी नाटक के संदर्भ में शायद पहली बार लेखन और प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को उस रूप में साथ जोड़ा जा सकता था। इसे संभव बनाने के लिए जो अनुकूल वातावरण मुझे वहां मिला था, मैं समझता हूँ उसी तरह के वातावरण में रंगमंच की वास्तविक खोज की जा सकती है। लेखन के स्तर पर भी और परिचालना के स्तर पर भी रंगमंच की वास्तविक खोज मूल प्रेरणा स्रोत है, जिसे राकेश की नाटक यात्रा के दौरान और उनकी नाटक भूमि में साफ देखा जा सकता है। संदर्भ 1, नटरंग 21, 72, पृष्ठ संख्या 14, डायरी के पन्नों से। 2, लहरों के राजहंस की भूमिका, पृष्ठ संख्या 28। 3, भूमिका, पृष्ठ संख्या 37। 4, नटरंग 21, 1972, नाटककार और रंगमंच, पृष्ठ संख्या 17।